الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورہ البقرہ کے اندر آیت پڑھ رہے ہیں، وہ 155 پہ ہم نے بات 154 پہ ہم نے بات مکمل کر لی تھی. بات یہ چل رہی تھی کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو دین پر قائم رہنے کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے ان دو چیزوں کو اختیار کر لو، صبر کا رویہ اپنا لو اور نماز قائم رکھو. دوسری چیز یہ سمجھ لو کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں. میں تقولو کا ترجمہ سمجھو کر رہا ہوں، یہ عربی زبان میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ کہنا جو ہے، ہم بھی بولتے ہیں اپنی اردو میں پنجابی میں، کہ یہ نہ کہنا کہ میں ایسا ہوں، مطلب یہ نہ سمجھنا. تو یہ نہ کہنا یعنی یہ نہ سمجھنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں، اموات ہیں. بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے ہو. اللہ کے راستے میں مارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقام صحابہ کو ملا ہے، جس امت کی تاسیس ہوئی ہے، اور فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون میں جو بات کی گئی ہے، اس عہد پر جو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ان کے ساتھ اصلاً بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو بھی بات کے امتی جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جب اللہ کے خاطر قتل کیے جائیں گے تو ان کا بھی یہی مقام ہوگا، لیکن وہ قیاس کے اصول پر ہوگا، نہ کہ اصل میں جن سے بات ہو رہی ہے وہ ہیں جن کو شہداء اللہ قرار دیا گیا. تو ایک تو یہ بات کہ شہید کا لفظ قرآن مجید میں عثمانی میں نہیں آیا جس معنی میں ہم اردو میں بولتے ہیں، یہاں مقتول کا لفظ ہی آیا ہے، یقتل کا لفظ ہی آیا ہے، جن کو قتل کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں ان کو ہم شہید کہتے ہیں. تو عربی زبان میں شہید عثمانی میں نہیں آتا، عربی زبان میں گواہ کے معنی میں آتا ہے، یا اللہ کے چنے ہوئے گواہوں کے معنی میں آتا ہے جو دین کی ہدایت دینے کے لیے اللہ نے امام بنائے. تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، یعنی اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، یعنی مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں. لیکن تم یہ بات سمجھ نہیں سکتے ہو، کیونکہ سادہ سی بات کیسے سمجھیں یہ بات کہ ایک آدمی ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کی جان نکل چکی ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ. تو فرمایا کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو کہ وہ کس طرح کے زندہ ہیں، کس حالت میں ہیں، کیسے ہیں. دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اللہ سے رزق پا رہے ہیں. تو یہ تمہارے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس کی تفصیل نہیں کی جا رہی. یعنی اگر تم سمجھ سکتے کہ ان کی زندگی کیسے ہے، وہ مرنے کے بعد بھی کیسے زندہ ہیں، تو ضرور تفصیل کر دی جاتی، لیکن تم سمجھ نہیں سکو گے، اس لیے اس کی تفصیل نہیں کی جا رہی. بس اتنا جان لو کہ وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں. سورہ آل عمران میں جا کر یہ بھی بتایا کہ وہم یرزقون، وہم عند اللہ یرزقون، وہ اللہ کے پاس رزق ان کو مل رہا ہے، یعنی کھا پی رہے ہیں، خوش ہیں، خرم ہیں. دوسرے مقام پہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ میں سے لوگ چلے گئے تھے، وہ بعد والے ان کو نیوز بھی دی جاتی تھیں کہ فتح مکہ ہو گئی ہے، یہ کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر اسی بات کو سمجھایا گیا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، ان کے ساتھ مردوں کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ زندہ لوگوں والا معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال وہ ہمارے فہم سے بالا تر ہے. یہ بات کوئی غیر علمی بات نہیں ہے کہ کچھ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ باتیں غلط ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نہ ذہنی ساخت ایسی ہے، ना हमारे पास उन चीज़ों को समझने के लिए कोई तजुर्बा है, ना उन बातों के समझने के लिए हमारी ज़हनी तश्कील हुई है। मसलन एक ऐसे आदमी को अगर आप ये समझाना चाहें कि टेलीविज़न का सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह एक टेलीविज़न स्टेशन से नशरियात जो हैं वो हवा में फेंकी जाती हैं और फिर वो उड़ते उड़ते हमारे टेलीविज़न तक पहुंच जाती हैं, ये आम आदमी को जिसने साइंस ना पढ़ी हो समझाना मुमकिन नहीं है। तो ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि उसका ज़हन इस काम के लिए तश्कील नहीं दिया गया, उसको तरबियत नहीं किया गया कि वो साइंस की बात को समझ सके। तो अगर हम शुरू से उसको साइंस पढ़ाना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाएगा। लेकिन जो ये तो इस दुनिया का मामला था, उसमें ये फ़र्क होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको समझ आ रहा है। लेकिन आखिरत के जो मामलात हैं वो हम में से कोई भी ज़हनी तश्कील के बावजूद भी नहीं समझ सकेगा जब तक कि हम वहाँ ना चले जाएं, क्योंकि वो दुनिया ही और होगी। मसलन यहाँ कोई चीज़ गिरकर ज़मीन की तरफ गिरती है, पता नहीं वहाँ गिरा करेगी कि नहीं गिरा करेगी, तो वहाँ का सारा कुछ ही मुख्तलिफ होगा, इसलिए वहाँ कुछ बातें समझ में आएंगी, यहाँ नहीं समझ आ सकती। तो जो सहाबा शहीद होकर वो ज़िंदगी पाए हुए थे उनको तो समझ आ गई कि हम कैसे ज़िंदा हैं, लेकिन जो ज़मीन पर सहाबा थे या हम आज, वो नहीं समझ सकते थे कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो ये इल्मी दुनिया के अंदर ये बातें, इल्मी दुनिया क्या, अमली दुनिया में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आती लेकिन हो रही होती हैं। साइंस की किताबों में आप पढ़ेंगे कि ये बात ऐसी है जो हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बात गलत है, इसका मतलब है कि हमारे पास वो सलाहियतें नहीं हैं, या हमारे ज़हनी तश्कील नहीं हुई, कंडीशनिंग नहीं हुई कि उन बातों को समझ सकें, या हम अभी पीछे हैं, उन बातों को हम समझ नहीं सकते। तो इसी तरह का मामला अल्लाह की ज़ात के बारे में भी है। अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला ने फरमाया कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला की तरह की कोई चीज़ नहीं है। इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर मैं किसी दूसरे मुल्क में गया, वहाँ मैंने कोई फल खाया, तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई मैंने एक फल खाया है, हमारे पाकिस्तान में तो नहीं पाया जाता, लेकिन उसकी शक्ल केले जैसी है, उसका जायका तरबूज से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें किन्नों वाली खटास भी है। तो ये मैं बातें करके आपको बता रहा हूँ कि फल किस तरह का, कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो जाएगा, लेकिन बस क्योंकि हमारे मुल्क में वो फल पाए जाते हैं जिनसे उसकी कोई ना कोई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में उस तरह का फल कोई हो ही ना, ना जायका वैसा हो, ना उसकी शक्ल वैसी हो, ना उसका गूदा वैसा हो, तो अब मैं नहीं समझा सकता। सिर्फ यही कहूँगा कि मैं आपको पार्सल कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए ये फल कैसा है। तो खुदा की ज़ात दुनिया में कोई चीज़ वैसी नहीं है, अगर वैसी हो जाएगी तो फिर वो खुदा हो जाएगी, तो इसलिए हमने वो चीज़ें देखी नहीं हैं और इसलिए हम खुदा को ना समझ सकते हैं, उसकी ज़ात को। बस कुछ सिफात जो हमने देखी हुई हैं अपने इंसानों के यहाँ, उसको हम समझ जाते हैं कि मेहरबान किसको कहते हैं, यानी रहमान रहीम किसको कहते हैं, हम इसका कुछ आइडिया समझते हैं माँ को देखकर, बाप को देखकर, किसी शफीक इंसान को देखकर, तो वो सिफात हम समझ जाते हैं क्योंकि उसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन जिसकी मिसाल मौजूद ना हो हम उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि हम रिलेट करके चीज़ों को एक दूसरे से कंपैरिजन करके समझ जाते हैं, बाज़ुकात उलट से भी बात समझ जाते हैं, बाज़ुकात मिसाल से उस तरह की चीज़ हो तो समझ जाते हैं। तो अल्लाह की ज़ात जो है वो हमारी गिरफ्त में नहीं आती क्योंकि उस तरह की कोई मिसाल नहीं है। ये मिसाल सिर्फ ये नहीं कि उसका वजूद कैसा है अल्लाह ताला की ज़ात का, बल्कि उसका होना ना होना ये भी हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि हम जिन चीज़ों से वाकिफ़ हैं वो बनाई गई हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो बनाई नहीं गई है। तो इन चीज़ों का होना असबाब के तहत है, जितनी भी चीज़ें दुनिया में पाई जाती हैं वो असबाब के तहत पाई जाती हैं, अल्लाह का होना असबाब से हटकर है, उसको असबाब की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इस पहलू से भी जो हमारे यहाँ एक बड़ा सवाल किया जाता है कि अल्लाह को किसने बनाया, अगर ये कायनात अल्लाह ने बनाई है तो अल्लाह को किसने बनाया, तो इस सवाल के पैदा होने की वजह यह है कि हमने चीज़ें ही वो देखी हैं आज तक जो बनी हुई हैं, वो चीज़ें देखी ही नहीं हैं जो बनी हुई नहीं होती। तो जब वो चीज़ें देखेंगे जो बनी हुई नहीं होती, तो तब ये सवाल भी पैदा नहीं होगा। तो खुदा हर पहलू से मुनफरिद है, उसकी कोई मिसाल यहाँ मौजूद नहीं है। तो अब ये जो बात कही गई थी, ये इसलिए कही जा रही है कि तुम उन लोगों को मुर्दा ना समझो जो अल्लाह की राह में मारे गए, बल्कि यूँ तर्जमा करना चाहिए, नहीं समझना जो मारे जाएंगे, क्योंकि अभी जंग कोई नहीं हुई, जंग आगे होनी है इन आयतों के बाद। तो अभी जंगें होनी हैं, जंगों में जो मारे जाएंगे उनको तुम मुर्दा ना कहना। ये गोया समझ लीजिए कि ज़हनी तौर पर तसल्ली और इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि जिस ज़िंदगी को बचाने के लिए तुम गुरेज करोगे जिहाद से या अल्लाह की राह में निकलने से, वही ज़िंदगी तुम्हें हासिल हो जाएगी, तो तुम मरोगे नहीं। इसलिए बेधड़क खुदा के दीन की खातिर, खुदा के हुक्म पर जिहाद के लिए निकल जाना, और तुम मरने के बाद भी ज़िंदा रहोगे। ये बहुत बड़ी गोया एक तरह की तसल्ली है, बशारत है, और अल्लाह की राह में जान तक देने के लिए एक बहुत बड़ा वादा है जो अल्लाह ताला कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि फरमाया कि तुम इसको समझ नहीं सकते हो, तो इसमें ज़रा शक व शुबा भी रहता है लोगों को कि पता नहीं इस ज़िंदगी का क्या मतलब होगा। तो अहले ईमान का यही फ़र्क होता है कि वो इस तरह की चीज़ों को मान लेते हैं जिसके पीछे दूसरे तरह के दलाइल होते हैं। दूसरी तरह के दलाइल का मतलब मेरा यह है कि बराह रास्त उस चीज़ की दलील नहीं होती, लेकिन कहने वाले पर एतमाद होता है, कहने वाले पर एतमाद होता है। तो जब ये बात सहाबा पर वाज़े हो गई थी कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और ये किताब इलाही है, तो बस वो अल्लाह के कौल की हैसियत से इसको समझेंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अन्फुसि वस समरात वबशरिस साबिरीन। तो अब जो ये आयत कही थी कि तुम अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को मुर्दा ना कहो, उसके बाद बताया कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा लाजमन। ये बहुत ताकीद का लाम भी है और नून ताकीद भी लगा हुआ है, ला भी लगा हुआ है, और नबलु वन्नकुम में जो वन्ना है उसका जो नून है वो भी। तो लाजमन, लाजमन मैं तुम्हें आजमाऊंगा, यकीनन आजमाऊंगा, बेशयन कुछ चीज़ों से। कौन सी चीज़ों से? खौफ, जू भूख, नक्स मिन अल अमवाल माल में कमी करके, नुकसान करके, वल अनफुस और जानों में नुकसान करके, वस समरात और तजारत में नुकसान करके। ये आयत भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनको शहादत के उस मंसब पर फाइज किया गया है, फजकुरूनी अज़कुरकुम में जिनका जिक्र हुआ था कि वो अल्लाह के रसूल को पैदा किया गया है ताकि वो गवाही देने वाले बने सहाबा पर, और सहाबा गवाही देने वाले बने लोगों पर। इन लोगों की ही ये बात कही जा रही है कि तुम पर लाजमन आजमाइश आएगी, खौफ की सूरत में। ये हमें मालूम है जो सीरत को पढ़ते पढ़ाते रहे हैं कि मदीना में बाज़ अवक़ात ऐसी सूरत होती थी कि कई कई महीने तक रात को पहरा दिया जाता था कि दुश्मन किसी वक्त हमला ना कर दें। जो भूख ये जंगों में भी पेश आई है, और जब तजारत छीन ली जाती है, जब रास्ते रोक दिए जाते हैं, उस वक्त भी भूख का सामना होता है। नक्से मिनल अमवाल, अमवाल जो हैं वो अरबों के यहाँ दो तरह के थे, एक अनाज था और एक मवेशी थे, और सोना चांदी भी था। तो यूँ समझे तीन किस्म के अमवाल थे, तीनों में कमी हो सकती है, जानवर मर सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, अनाज खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है। इसी तरह रकम, पाकिस्तान इस वक्त नक्स मिन अल अमवाल की आजमाइश से गुजर रहा है। तो ये उस नौयत की चीज़ हो जाएगी। वल अनफुस यानी जाने मारी जाएंगी, उनके अंदर नुकसान हो जाएगा, कोई साथी मारे जाएंगे, कोई बाप, किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी की बीवी, ये अल्लाह की राह में मारे जाएंगे। वह समरात और तजारत, मांदी मंदी हो जाएगी तजारत में, ये सारी आजमाइशें आ सकती हैं। कुरान में कुरैश के लिए भी बताया गया कि कुरैश पर भी साल में एक दो दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है, लेकिन उसको तवज्जो नहीं देते थे। तो इस तरह से ये सहाबा के लिए नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनने के लिए जिस किस्म की आजमाइश की ज़रूरत थी उसमें उनको डाला गया है, और नहायत सख्त यानी आजमाइश है, ये आसान आजमाइश नहीं है। अल्लाह के बंदों के लिए, इमामत का मनसब के लिए, ये बड़ी एक कठिन किस्म की ज़िंदगी है जिसमें से सहाबा को गुजारा गया। यूँ समझिए कि एक भट्टी में डालकर पकाया जा रहा है ताकि मैल कुचैल निकल जाए और खालिस जो कुंदन है वो सामने आ जाए। हमारे यहाँ ये मुहावरा है कुंदन का, पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं समझे, सोने को पिघला कर उसका जो मिलावटें होती हैं उसको अलग किया जाता है, तो जो खालिस सोना होता है उसको फिर कुंदन कहते हैं। हमारे यहाँ और भी चीज़ें हैं जो जलाकर साफ़ की जाती हैं, उनके अंदर से मैल कुचैल निकाला जाता है, बस उसी तरह का काम जो है वो इस प्रोसेस में अल्लाह ताला सहाबा के साथ करना चाहते थे कि जो कमज़ोर होंगे, जो मुनाफिक होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते चले जाएंगे और इस मुश्किल रास्ते में वही आगे बढ़ेंगे जो बिल्कुल सही पक्के ईमान वाले, मुखलिस, तरोताज़ा, सेहतमंद सोच वाले, अच्छी सोच वाले, अच्छे ईमान वाले, वही आगे बढ़ेंगे। तो ये चक्की इसलिए चलाई जाती है, और ये चक्की आज भी चली हुई है, लेकिन आज इस शिद्दत के साथ नहीं जिस शिद्दत में इस आयत में बयान हुई है। आज भी अल्लाह ताला यही कर रहे हैं, मुश्किलें दे रहे हैं, आसानियां दे रहे हैं। कोई मुश्किलों की वजह से फंस जाता है, अपने ईमान को छोड़ देता है या नेकी को छोड़ देता है, कोई खुशहाली में छोड़ देता है, तो चक्की चल रही है, उस चक्की में से आटा पीस के निकल रहा है, कौन खालिस निकल आएगा, कौन मारा जाएगा, बस यही काम हो रहा है। तो सहाबा के ज़माने में ये ज़रा शिद्दत के साथ लगाई गई, तो फरमाया कि मैं तुम्हें आज लाजमन आजमाऊँगा, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ मालों में कमी से, कुछ जानों में कमी से और कुछ तजारत में कमी से। वबशर साबरीन, अलबत्ता साबरीन को आगाह कर दीजिए, अल्लाज़ीना इज़ा असाबत हम मुसीबतन, किस बात से आगाह कर दीजिए, आगे बताई गई है कि वो लोग के जिन पर मुसीबत आती है तो वो ये कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। यह कालू भी समझने के मानी में, कहने के मानी में नहीं है। हमने एक रस्म बना ली है कि जब कोई फौत होता है तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ना उसका मतलब जानते हैं ना उसका मकसद जानते हैं। तो ये समझने की बात है कि जब उन पर मुसीबत आती है तो वो क्या समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही ने हमें बनाया, अल्लाह ही ने हमें आज इम्तिहान के लिए भेजा है, तो अल्लाह ही के हैं तो अल्लाह ही के पास जाना है, तो रोने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है, उसका हक था वो ले गया। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी साहिबजादे जब फौत हुए हैं तो आप की आंखों में आंसू जारी थे और आप यही फरमा रहे थे कि अल्लाह का था अल्लाह ले गया, यही अल्फाज थे। तो इसका मतलब यह है कि इस दुनिया की हकीकत ये नहीं है कि ये मेरी दुनिया है या आपकी दुनिया है, ये अल्लाह की दुनिया है, हम भी अल्लाह ही के हैं, तो अल्लाह अपनी चीज़ ले जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसमें एक दिलनवाजी भी है, वो दिलनवाजी यह है कि तुम कोई शैतान के पास जा रहे हो, फिरौन के पास जा रहे हो, घबराते क्यों, अल्लाह ही के थे ना, अल्लाह ही के पास जा रहे हो, तो वहाँ अल्लाह से मामला होना है, किसी फिरौन से मामला नहीं होना है, किसी जालिम व जाबिर हस्ती से मामला नहीं होना है। तो तसल्ली रखो और खुदा के पास जाने की तैयारी करो। तो ये वो जहन था जिसको यहाँ अल्लाह ताला पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम एक जुमला बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, जैसे को रस्म अदा हो गई बस। तो ये रस्म नहीं है, बल्कि खुदा के दुनिया में अल्लाह का हक बयान कर रहे हैं, इसकी आयत बयान कर रही है कि अल्लाह के हैं हम, अल्लाह ले गए, अल्लाह ही की तरफ जाना है हमने। और दूसरी ये बात बयान हो रही है कि जाना कहाँ पे, अल्लाह के पास जाना है, यहाँ भी अल्लाह ही के पास हैं, वहाँ भी अल्लाह ही के पास जाना है। तो इसलिए जो लोग इस तरह के हैं उनको फिर मुसीबतों का डर नहीं लगता। हमारे यहाँ जो मादी दुनिया है उसमें एक बात, मौत का एक दिन मुकर्रर है, उससे पहले तो आनी नहीं है, ये भी बहादुरी पैदा करती है। लेकिन ये बहादुरी वो है जो एक काफिर पहलवान के अंदर भी होती है। लेकिन एक बहादुरी होती है कि मैं भाई अल्लाह के पास जा रहे हैं, चलो कोई मसला नहीं, चलते हैं, कुछ दुश्मनों के वतन में थोड़ा जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो बस बिस्मिल्लाह चलते हैं। इस वजह से वो फिर परेशान नहीं होते, वो घबराते नहीं, उनको कोई चीज़ डराती नहीं है। तो यही वो लोग होते हैं कि जो फिर बातिल के सामने बिल्कुल डट के खड़े हो जाते हैं, उनको कोई घबराहट नहीं होती। तो ये साबित कदमी उसी बात के लिए जो पीछे बात चली आ रही है कि तुम नमाज और सब्र से काम लो, अपने अंदर सब्र और इस्तकामत पैदा करो। अल्लाह ताला इस्तकामत इख्तियार करने वालों के साथ है। इस्तकामत के लिए ये बात भी समझ लो कि कोई आदमी अल्लाह की राह में मारा जाता है तो मुर्दा नहीं होता, बल्कि उनको ज़िंदगी मिलती है। हाँ, तुम उनकी ज़िंदगी को नहीं समझ सकते। और यह भी कि मैंने तुम्हें लाजमन आजमाना है, तो साबित कदमी दिखानी पड़ेगी, मैंने तुम्हें लाजमन आजमाना है। तो ये ना समझो कि काफरों ने तुम्हारे जानवर चोरी कर लिए हैं, काफरों ने तुम्हारा आदमी कत्ल कर दिया है, ये समझो कि मैंने आजमाइश में तुम्हें डाला। मैंने अपनी एक किताब लिखी थी बहुत पहले, हम पर मुश्किलें क्यों आती हैं, तो उसमें मैंने ये जुमला लिखा था कि हर काम जो भी आपके साथ बुरा होता है तो उसको यूं समझिए कि खुदा की तरफ से इम्तिहान के लिए आया है। अब मैंने इसके ऊपर वो रवैया जाहिर करना है जो कल मुझे इम्तिहान में कामयाब करते हैं। तो मसलन आपके भाई ने आपको ताना दे दिया है, एक सादा सा जवाब है कि मैं भी ताना दे दूं, बल्कि 10 दे दूं, कौन रोकेगा। लेकिन अब दूसरा रवैया यह है कि मैंने खुदा को जवाब देना है, कल मैंने कामयाब होना है इम्तिहान में, अब मैं क्या करूँगा। इस रोशनी में अपना इकदाम करना चाहिए कि मैंने कल खुदा को जवाब दे होना है। तो अगर मैंने 10 गाली के जवाब में 10 गाली दे दी तो 9 गालियों में पकड़ा जाऊंगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी कोई आपके साथ बुराई करे या कोई बुराई हो जाए तो उसको इसी नज़र से देखना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाया जा रहा है। हमारे जितने बहन भाई हैं, हमारे जितने अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, सवालात हैं, पेपर के मुश्किल सवालात। जितना भाई आपका तंग करने वाला होगा उतना मुश्किल सवाल है और उतने ही उस पर नंबर ज़्यादा मिलेंगे अगर आपने मैंने सही रवैया अख्तियार कर लिया। जितना तंग करने वाला बहन भाई है उतना ही हमारे लिए सवाब का जरिया बन रहा है, और जितना कोई शरीफ आदमी है उतना ही हमारे लिए गुनाह का बायस बन सकता है कि हम उसको नरमी से ले लें और काम ख़राब हो जाए। इसलिए जितने ये मोहसिन हैं हमारे, जो हमें गालियाँ देते हैं, हमारे ताने देते हैं, हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो ये मोहसिनीन हैं हमारे, ये हमारे गुनाहों के झाड़ने का बायस बनते हैं, ये हमारे अमाल नामे में सवाब लिखने का बायस बनते हैं। लेकिन इसी सूरत में कि जब हम सब्र इख्तियार करें, इस्तकामत इख्तियार करें, खुदा की खातिर माफ़ करने वाले बन जाएं, खुदा की खातिर हम बातों को सही तरीके से समेटने वाले बन जाएं। किसी ने बुरा कर दिया तो कोई बुरा जवाब ना दे, हाँ बदला लेने के हद तक ले सकते हैं, उसके बाद छोड़ दें बस, अल्लाह अल्लाह खैर सल। तो ये वो मिजाज है। अब दूसरी बात ये फरमाई कि तुम अल्लाह की राह में इस्तकामत हासिल करने के लिए समझो कि आजमाइशें आनी हैं, और ये फरमाया कि ये भी समझ लो कि जो मुसीबत आने पर ये सोचते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही की तरफ जाना है, वही साबित कदम रहेंगे, वरना वो साबित कदम नहीं रह सकेंगे। अब इस आयत में जो दौरे जदीद का सबसे बड़ा मुश्किल सवाल समझा जाता है वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल का है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में मुसाइब क्यों पैदा किए, शर क्यों पैदा किया। उसके लिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सही तसव्वुर ये है ज़िंदगी का, मैंने आजमाने के लिए चीज़ें पैदा की हैं और ये मैं पैदा करूँगा, तुमने क्या रवैया अख्तियार करना है कि ये सब कुछ अल्लाह ही का है, अल्लाह ही की तरफ जाना है। हमारे यहाँ मशहूर है एक बादशाह महमूद और उसका गुलाम अय्याज। तो अय्याज के बारे में वो ज़रा हसद करते थे कि अय्याज गुलाम सा है, ना कोई अक्ल है, ना कोई पढ़ा लिखा है, ना कुछ। तो महमूद गजनवी उसको पसंद क्यों करते। तो एक दिन उसने क्या किया कि अपने पास खरबूजा रखा, एक कड़वा था एक मीठा था, तो सबको उसने पहले मीठे की एक एक काश दी खाने के लिए खरबूजे की, सब ने खा लिया। फिर उसने कड़वे खरबूजे की दी, सब वजीरों ने एक लुकमा लिया और रख दिया, अय्याज सारे का सारा खा गया। तो बादशाह ने पूछा कि अय्याज तुम कड़वा खरबूजा भी खा गए। तो उसने कहा कि जिधर से मीठा आया था उधर से ही कड़वा आया, जिधर से मीठा आया था तो अब मैं छोड़ दूँ उसको। ये जो मिजाज है ये खुदा के साथ होना चाहिए, महमूद गजनवी के साथ ज़रूरी नहीं है। कि खुदा ही ने पैदा किया है तो खुदा ही कुछ आजमाइश में डाल रहा है। तो यही है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे फरमाया वाउलाइका अलैहिम सलावातुन मिन रब्बिहिम व रहमतुन वाउलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं जिन पर खुदा की तरफ से दुरूद है, सलात है इनके ऊपर, और रहमत है, और यही लोग हैं जो सही रास्ते पर हैं। मैंने सलावात का तर्जमा दुरूद किया है, यही किया जाता है हमारे यहाँ, इसलिए किया है ताकि समझें कि अरबी ज़ुबान में सलात का मतलब वो वाला दुरूद नहीं है जो हमारे यहाँ मशहूर हो गया है। लफ्ज़ वही है सलावात, दुरूद वाला ही लफ्ज़ है। सलावात का मतलब है रहमत, फजल करना, रहमत करना, ये इसके मानी है। तो वो जो आयत है कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते अपने बंदे पर दुरूद भेज रहे हैं, वो अल्लाह ताला हम पर भी भेजते हैं। यहाँ कह रहे हैं अलैहिम सलावात मिन रब्बे, तो वो दुरूद अगर अल्लाह ताला नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं तो हम पर भी भेजते हैं। इसका मतलब दुरूद भेजना है ही नहीं, फजल करना है, रहमत करना है, इनायत करना है, ये मतलब है। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ों के मानी फ़ाइल के बदलने से बदल जाते हैं। मसलन हम कहेंगे कि मैंने शुक्र किया तो इसका मतलब शुक्रगुजारी है, और कहें अल्लाह ने शुक्र किया तो इसका मतलब अमल कबूल किया। एक ही फ़ेल है, एक ही लफ्ज़ है। अल्लाह ताला करें शुक्र तो फ़ेल को कबूल करना हमारे काम को, और हम करें शुक्र तो इसका मतलब शुक्र करना, जिसको हम शुक्र करना थैंक यू कहना। ऐसे ही तौबा है, अल्लाह ताला तौबा करें तो मतलब मेहरबानी की, तवज्जो की हमारे ऊपर, और बंदा तौबा करे तो अल्लाह की तरफ तवज्जो की माफ़ी मांगने के लिए। एक ही लफ्ज़ ताब अल्लाह और ताबा अब्दुन। ऐसे ही सल्ला है, सल्ला मैं कहूँ तो इसका मतलब है या अल्लाह तू अपने बंदे पर रहम कर, और जब अल्लाह ताला सल्ला करते हैं तो रहमत भेजते हैं, उसका मतलब मांगना नहीं है। तो अब जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पढ़ रहे हैं, भेज रहे हैं, तो आप इसका मतलब समझिए क्या है। अल्लाह ताला बैठे बैठे कह रहे हैं या अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत कर जैसी तूने इब्राहिम पर रहमत की थी। अल्लाह ताला किस अल्लाह को कह रहे हैं, सोचते नहीं हम कि बैठे बैठे कह रहे हैं अल्लाह, अल्लाह ताला भी बैठे हुए कह रहे हैं अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत कर। उनको क्या कहने की क्या ज़रूरत है, उनको करनी चाहिए। उनका काम रहमत भेजना है, बैठ कर रहमत का वजीफ़ा करना नहीं है। सवाल पैदा होगा कि अल्लाह का कौन अल्लाह है जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं सोचते आप। बल्कि किसी ने लतीफ़ा सुनाया इसी इतवार को जो कल गुजरा है कि एक साहिब ने तकरीर करते हुए फरमाया, मरूफ आलिम थे, कि अल्लाह ताला का जिक्र तो ख़त्म हो जाएगा जब क़यामत बरपा होगी, सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो बैठे तस्बीह कर रहे होंगे ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो ये वो जुर्रतें हैं जो हम पैदा कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सलावात का तर्जमा किया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जो انہ للہ کہنے والے ہیں ان پر بھی درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت بھیجتے ہیں، یہ واضح رہنا چاہیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے درود ہے، رحمتیں ہیں، سلامتی ہے، فضل ہے، عنایات اور رحمت ہے. رحمت جو ہے وہ صلوات کے مقابلے میں تھوڑے جامع ہے. صلوات میں تو فضل اور عنایت اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، رحمت میں ہدایت بھی شامل ہو جاتی ہے کہ قرآن کی ہدایت، انبیاء کی آئی ہوئی ہدایت ان کے نصیب میں آ جاتی ہے اللہ کی رحمت سے، یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور شفقت اور مہربانی اور عنایتیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جو مصیبت کے موقع پر یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے خدا کی رحمتیں ہیں. جو بشر صابرین تھا وہ یہ ہے، اب اس کا جواب پورا مکمل یہ ہوا ہے کہ وہ صابرین جو مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا شعور رکھتے ہیں، ان کے اوپر خدا کی طرف سے درود، فضل، عنایات اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، صحیح روش پر ہیں. یہ ظاہر ہے کہ اب جو بات چلی تھی قبلے کی تبدیلی کی، تو کما ارسلنا فیکم رسولن والی جو آیت تھی 151، وہاں سے بیچ میں یہ بات آ گئی تھی کہ قبلہ تبدیل کرنے کا مسئلہ کیوں پیدا ہو گیا. تو یہ بتایا تھا کہ میں نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ تمہیں دین سکھا دے صحیح طرح سے، اور پھر اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس عہد پر قائم ہو جاؤ جس عہد پر رسولوں کی قوم قائم ہوا کرتی ہے، یعنی فذکرونی اذکرکم والا عہد جو تھا. اس کے بعد پھر اس عہد پر قائم رہنے کے لیے کچھ نصیحتیں کی ہیں، وہ نصیحتیں اب یہاں ختم ہو گئی ہیں. تو دوبارہ مضمون بیت اللہ اور تحویل قبلہ کی طرف چلا گیا ہے. تو بیچ میں یہ تین چار آیتیں، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ. جملہ معترضہ کا مطلب اعتراض نہیں ہوتا بلکہ باتوں کے بیچ میں کوئی بات آ جاتی ہے. تو جیسے میں ابھی درس قرآن دے رہا ہوں سورہ البقرہ کا، لیکن بیچ میں درود کا مسئلہ میں نے چھیڑ لیا، تو یہ جملہ معترضہ تھا. اب میں واپس قرآن کے درس پہ آ گیا ہوں. تو اس طرح کا یہاں پر بھی ہوا کہ بات جو چل رہی تھی قبلے کی تبدیلی کی، اس کی حکمت بتائی، اس کا سنبھالنے کے لیے اس کے جو استقامت ہونی چاہیے تھی وہ بتائی، اور اب دوبارہ مضمون وہیں پر آ گیا. ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، کہ جو صفا اور مروہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر میں سے ہے. شاعر شعرا کی جمع ہے، اور اس کے سادہ لغوی معنی علامت کے ہیں، کوئی نشان مقرر کر دیا، کوئی علامت مقرر کر دی. اور لیکن یہ اس طریقے کو بھی کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہو. اور یوں سمجھ لیجئے کہ دین کا جو ایک نظام سا بنتا ہے اس کو بھی شعرا کہہ سکتے ہیں. تو ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ صفا اور مروہ خدا کے دین کا جو پورا نظام ہے اس میں سے دو چیزیں ہیں، یعنی یہ سینسس کی بنے گی، یا اللہ نے جو شریعت، شرائع، احکامات مقرر کی ان میں سے یہ دو چیزیں ہیں، یا اللہ نے جو محرمات قائم کی، جو قابل احترام چیزیں بنائی ہیں ان میں سے یہ دو چیزیں ہیں، یہ سارے مفاہیم اس کے ممکن ہیں. تو صفا اور مروہ یہ دو پہاڑوں کا نام ہے، جو حج کرنے جاتے ہیں یا دین سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے، سات چکر لگائے جاتے ہیں، تو یہ انہی دو پہاڑوں کا نام ہے. اب تو غالباً جو رستے بن گئے ہیں پہاڑوں کا تاثر کم رہ گیا ہے، لیکن بہرحال پرانے جو جدید سہولیات سے پہلے جو حج کرنے جاتے تھے ان کو معلوم ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان بھاگا جاتا ہے. تو صفا اور مروہ ان دو پہاڑوں کے نام ہیں جن کے درمیان حج اور عمرے میں سعی کی جاتی ہے. قرآن مجید نے اس کو سعی نہیں کہا، طواف کہا ہے. اس کی ایک وجہ میں جب اس کا ذکر آئے گا تو کروں گا. تو صفا اور مروہ دونوں کے دونوں خدا کے علامتیں ہیں، خدا کی مقرر کردہ دو پہاڑیاں ہیں، خدا کے دین کے اس پورے ڈھانچے کے میں سے ایک حصہ ہے. شاعر جو ہیں وہ احترام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، پابندی کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ محرمات بھی ہوتی ہیں، ان سے بچا بھی جایا جاتا ہے، یعنی ان کی توہین نہ کی جائے، ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے. ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए दीन मुकरर किया है उसमें कुछ इबादतें बहुत अहमियत रखती हैं। उन इबादतों में एक इबादत कुर्बानी की है। कुर्बानी के मानी ये हैं कि बंदा अपनी जान देने को तैयार है। अब आप देखिए कि ऊपर जो जान देने का मामला था उसके साथ सफा का ताल्लुक भी है। ऊपर था ना कि जब उनको मुर्दा ना कहो जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, तो सफा व मरवा का एक मानवी रब्त भी है उसके साथ कि सफा और मरवा में जो सही है वो दरअसल वो सही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर की थी कि मैं इसको आपके घर पर नज़र करने लगा हूँ, अपने बेटे को, जब उनको कुर्बान करने गए तो 7 चक्कर लगाए। जो अल्लाह के घर पे वारने का मफहूम, हम जो पंजाब में उर्दू में कहते हैं वारने का मफहूम, वही मफहूम है इसका भी, सही का भी और तवाफ का भी। क्या हम अपने आप को खुदा के घर पे वार देते हैं तो वार के क्या करते हैं, चीज़ फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, तलफ कर देते हैं। तो गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माईल अलैहिस्सलाम को गए तो वो अल्लाह की राह में उनको हलाक करने गए थे, ज़िबा करने गए थे। तो वो जो सही है वो दरअसल उस कुर्बानी के अपने आप को खुदा के घर पे, खुदा के नाम पे वार देने का नाम है, कुर्बान कर देने का नाम है। ये सही उसकी वजह से है, उस वाक़े की वजह से है, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन उसके मानी ये है। इसलिए हज़रत इब्राहीम ने भी यहाँ पर उसी अमल के लिए सही की जिस अमल के लिए इनको मुकर्रर किया गया था। तो फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा 2 अलामतें हैं, इनको कायम रखना। फमन हज्जल बैता, तो जो तुम में से हज करने जाए अल्लाह के घर का, अवे तमरा या उम्रा करने जाए, फला जुनाह अलैह, तो उसके लिए जायज़ है कि अन यतवफा बिहिमा, कि इन दोनों का तवाफ करें, वही चक्कर लगाए जो मैंने अभी वाजे किया, तो इन दोनों का तवाफ करें। अब ये जो है ना फला जुनाह अलैहि, इससे कुछ मुफस्सरीन को यह ख्याल हुआ कि गालिबन अरबों के हाँ या सहाबा के हाँ ये सवाल पैदा हुआ कि ये पता नहीं है भी कि नहीं दीन में, क्योंकि कहते हैं कि सफ़ा और मरवा पर बुत रख दिए गए थे, उस वजह से लोगों को ख्याल हुआ, या यहूद ने ये सफ़ा और मरवा को गोली कर दिया हुआ था, जैसे मैं पीछे ही बता चुका हूँ कि मरवा को मूरिया कर दिया हुआ था, या इस तरह की चीज़ें। तो यहूद एतराज़ कर रहे थे कि ये तो सफ़ा मरवा तो कोई चीज़ नहीं है, या ख़ुद सहाबा के दिलों में सवाल पैदा हुआ कि सफ़ा पर भी बुत पड़ा हुआ है, मरवा पर भी पड़ा हुआ है, तो क्या ये अल्लाह ने मुकर्रर किया था या बुतों की वजह से कुरैश ने बना लिया था। तो फला जुनाह का उन्होंने ये मतलब लिया कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें कोई गुनाह नहीं है, तुम करो, सफ़ा और मरवा अल्लाह के निशानात हैं, यहूद की बात भी गलत है और ये बुतों का रखना भी गलत है। लेकिन ये जुमला लाजम नहीं होता कि पीछे कोई एतराज़ ही हो, कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पे आया है, तो ये सिर्फ मशरू करने के लिए भी है कि तुम्हें इसमें कोई गुनाह नहीं है, तुम करो, ये बिल्कुल ठीक है, नेकी का काम है। तो फला जुनाह अलैहि या तवफा बेहिमा का मतलब है कि ये नेकी का काम है, इसको करो। इसलिए अगला जुमला है वमन ततवा खैरन, जो भी नेकी का काम अपनी मर्जी से करता है तो फ़ैनल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह ताला, अब देखिए शाकिर आया है। अभी मैंने बात की थी कि सलावात अल्लाह ताला दुरूद भेजने का मतलब क्या है, मुझसे शाकिर है कि अल्लाह ताला शाकिर है, मैं शाकिरूंगा तो शुक्र करने वाला, अल्लाह है तो अमल कबूल करने वाला। तो फरमाया जो नेकी करेगा तो अल्लाह ताला उसके अमल को कबूल करने वाला है, ठीक है। बाकी वजाहत करता हूँ मैं, तब जो जुमले का मतलब है कि ये नेकी है सफ़ा और मरवा की सही करना, और ये नफली इबादत है, ये हज और उम्रे का लाजमी हिस्सा नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। तो ये नेकी है लेकिन नेकी नफली तौर पे रखी गई है, तो जो भी जाए वो अगर हज करते हुए उम्रा करते हुए इनका तवाफ़ कर ले तो कोई गुनाह नहीं है, नेकी है, जो भी नेकी करेगा वह अपनी तरफ से उसको मैं अजर देता हूँ, मैं उसका अमल कबूल करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला शाकिर हैं और अलीम हैं। शाकर के मानी वही मैंने बता दिए कि अल्लाह ताला अमल को कबूल करते हैं, और अलीम के मानी हैं कि अल्लाह ताला जानने वाले हैं। ये शाकिरुन अलीम खुशखबरी भी है और धमकी भी है। खुशखबरी इस तरह से है कि अल्लाह ताला जानते हैं तुम्हारे अमल को कबूल करेंगे, और धमकी इस मानी में है कि जिनकी नीयतें बुरी होती उनके अमल कबूल नहीं होंगे, जिन्होंने वाकई बुतों के लिए किया होगा उनके भी कबूल नहीं होंगे, जिन्होंने शक व शुबे के साथ किया होगा उनके साथ भी मामला कुछ और होगा। तो ये अलीम के जो हैं वो लफ्ज़ के अंदर एक सख्ती भी है और एक बशारत भी है, और अलीम के अंदर बशारत यह है कि अल्लाह ताला को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि या अल्लाह मैंने अमल कर लिया है तो कबूल कर ले, वो ज़ाया नहीं जाएगा, उसको पहले ही पता है। तो कोई अमल ज़ाया नहीं जाता जो आदमी अल्लाह के लिए करता है। तो यहाँ रोक लेते हैं, बात को, वक्त हो गया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।